दोनों डरी सहमी हालत में अपने कमरे तक तो पहुंच गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये पूरी कहानी नहीं बल्कि उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। नमस्ते, मैं हूं चारवाक माधुरी और आप सुन रहे हैं मेरी पहली फिक्शन सीरीज चिपी के भूत का दूसरा एपिसोड। ये पूरा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं चारवाक.com पर, CHARWAK.com। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है तथा इसका किसी भी सत्य जीवित व्यक्ति या घटना से कोई भी संबंध नहीं है। ये कहानी केवल और केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई है तथा इस कहानी का उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना हरगिज नहीं है। बबलू ने जो विजू के बारे में कहानी सुनाई वो सुनकर अक्षय और विनय दोनों हैरान थे। जैसे ही वो तीनों उनके कमरे के पास पहुंचे, बबलू ने कहा, देखो इतने डरने की बात नहीं है, आप आराम से सो जाइए, बस अगर बाहर से कोई रात में दरवाजा ठकठकाए तो खोलना मत, ठीक है, मैं चलता हूं। ये कहकर बबलू अपने घर की तरफ मुड़ा। विनय ने दरवाजा खोला, दोनों चुपचाप कमरे में चले गए। दरवाजा बंद करके अक्षय और विनय सोने की तैयारी में लग गए। दोनों बेड पर लेटे हुए थे, एक दूसरे से कोई बात नहीं, सिर्फ लेटे हुए हैं, आंखें खुली, छत को ताकती हुई। दोनों को लेटे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके थे। दोनों चुपचाप अपने ख्यालों में डूबे हुए, बस एक ही बात दिमाग में, बबलू सच कह रहा था या झूठ, और अगर सच कह रहा था तो सुबह कौन मिला, और अगर झूठ है तो बबलू ने ऐसा क्यों किया। करीब 20 मिनट की इस चुप्पी के बाद विनय बोला,
अक्षय।
मुझे पता चल गया बबलू ने ऐसा क्यों बोला।
क्यों?
दो चीजें हैं, या तो बबलू सच कह रहा था या झूठ बोल रहा था। अक्षय ने बोला,
यार तू अब ये CID मत खेल, पॉइंट पे आना।
विनय कहता है, ओके, सुबह अगर विजू नहीं आता है तो बबलू की कहानी सच्ची है, और अगर विजू आ जाता है तो बबलू ने हमें डराने के लिए ये झूठी कहानी बताई। जब तक इसका पता नहीं चलता हमें डरना नहीं चाहिए। अक्षय को यह बात ठीक लगी और दोनों सो गए। सुबह के करीब 6 बजे खांसी की इस आवाज ने अक्षय और विनय को हड़बड़ाहट में उठा दिया। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अक्षय दरवाजा खोलता है और दरवाजे के सामने आंगन में एक 60-65 साल का बूढ़ा झाड़ू लगा रहा है। खांसते झाड़ू लगा रहा है। खांसी की नजाकत, मेरा मतलब है वक्त की नजाकत को देखते हुए विनय उस बूढ़े चाचा से सवाल करता है,
चीचा
झाड़ू लगाने में बिजी। चिच्चा,
हाँ,
वो विजू कहाँ है?
हाँ,
अरे वो विजू, वो लड़का जो हमारी मदद के लिए था यहाँ पे, कहाँ है?
हाँ, अच्छा,
वो कुछ सामान आनने को गया है शहर में। आ जाएगा कुछ वेर में, आ जाएगा वो।
विनय के चेहरे पर सवालिया निशान। वो ये सोच रहा था कि चिचा आखिर कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। इधर विजू के बारे में सुनकर अक्षय की आंखें चमक उठी और वो हल्का सा मुस्कुराया। अक्षय की शक्ल बिल्कुल उस इंसान के जैसे हो गई थी जैसे हर इंसान उल्लू बनने के बाद दिखता है। उसने विनय से बोला,
अरे बिजू सामान आनने को गया है शहर में, मतलब बबलू चिच्चा ने हमें उल्लू बनौला है।
यह सुनकर विनय के दिमाग की बत्ती जली और दोनों तेजी से बबलू के घर की तरफ जंगल के रास्ते पर दौड़ने लगे। विनय बोला,
इस बबलू की तो कह के लेंगे। अक्षय कहता है, सबका बदला लेगा रे तेरा अक्षय। वो दौड़ते दौड़ते बबलू के घर तक पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें दिखता है
एक पत्थर का ढांचा, एक टूटे हुए पुराने घर का ढांचा। बबलू का घर रातों रात एक खंडर में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा खंडर जिसे देख के ऐसा लगे कि सालों से वहां पर कोई रहा ही ना हो।
उसका उसका घर यहीं पे था ना अक्षय? हाँ लगता तो यही है। शायद आगे होगा, कल रात के अंधेरे में ये खंडर दिखानी होगा हमें।
वो दोनों थोड़ा और आगे चले जाते हैं, लेकिन उन्हें जंगल के अलावा कुछ और नहीं दिखता। वो वापस उसी जगह पर आते हैं और उस खंडर को फिर से ठीक से देखते हैं। वो खंडर बबलू के घर से हूबहू मिलता था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो फिर से अपने कमरे की तरफ चलने लगे, लेकिन दिमाग में सिर्फ यही बात थी कि आखिर कल रात से हो क्या रहा है। वापसी के रास्ते पर दाईं तरफ उन्हें वो पेड़ दिख जाता है जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। अक्षय थोड़ा डरा हुआ जरूर था, लेकिन उसे अब ये पता लगाना ही था कि आखिर हो क्या रहा है यहां पर। थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर उसने तय किया कि वो फिर से उस पेड़ के पास जाएगा। हो ना हो, उस पेड़ के आसपास कोई राज जरूर छुपा हुआ है। अक्षय का दिमाग कह रहा था कि यहां से हो सके उतने जल्दी निकल जाए, लेकिन उसके मन की उत्सुकता उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। अक्षय ने विनय को इशारे से पेड़ की दिशा में चलने को कहा। दोनों धीरे धीरे उस रास्ते पर चल रहे थे। दूरी कम हो रही थी। उस पेड़ की तरफ जाने के लिए जैसे ही उन्होंने वो छोटा सा रास्ता छोड़ा, उन्हें पेड़ के ठीक नीचे विजू खड़ा दिखा। विजू गुस्से से उनकी तरफ देख रहा था, जैसे कि उन्हीं का इंतजार कर रहा। मैंने कहा था यहां मत आना। यह सुनकर अक्षय और विनय भागने ही वाले थे कि तभी विजू थोड़ा शांत हो गया और बोला, मुझे पता है बबलू ने आपको मेरे बारे में बताया। यह सुनकर दोनों एक जगह पर बिना हिले खड़े रह गए, जैसे दोनों को सांप सूंघ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। मुझे थोड़ा पास आकर थोड़ा और शांत होकर बोला, मुझे पता है आप इस वक्त बहुत डरे हुए हो, लेकिन मैं आपका केयरटेकर हूं ना, तो आप और आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है ना, इसलिए मैंने आपको यहाँ आने को मना किया था। मुझे लगा ही था कि बबलू आपको मेरे बारे में कुछ अनाप शनाप बताएगा। देख बिजू, हमें ऐसी वैसी बातें करके ना उलझा मत, ठीक है? कल रात से यहाँ पर बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। अगर हमें तंग करने का तुम्हारा ये प्लान है ना, तो अभी बता दो, नहीं तो मैं शो के ऑर्गेनाइजर्स को तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। हाँ, कर दो कंप्लेन। और ये भी पूछ लेना कि अच्छे खासे घर को खंडर बनने में कितना वक्त लगता है। विजू को पता था कि अक्षय और विनय को बबलू की कहानी जाननी है। विजू बबलू की कहानी बताता है।
कुछ साल पुरानी बात है, बबलू अपनी बीवी के साथ जंगल के उस घर में रहता था
जो घर उस ब्रिटिश ऑफिसर ने उसके दादाजी को दिया था। घर था, काम था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस कमी थी एक संतान की। शादी के 5 साल बाद भी बबलू को एक भी संतान नहीं थी। लेकिन बबलू को बच्चों से कुछ खास लगाव था। गांव के कुछ 5 बच्चों से उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। हर शाम वो बच्चे उस वड़ा पाव के ठेले पर आते वड़ा पाव खाने के लिए, वही ठेला जो उसके घर के बिल्कुल सामने था। बबलू भी उन्हें जितने वड़ा पाव चाहिए सारे के सारे मुफ्त में दिया करता था।
बबलू की बीवी बबलू से अक्सर नाराज रहा करती थी। आखिर उसे गांव वालों के ताने जो सुनने पड़ते थे। एक बार दोनों का झगड़ा हुआ, और ऐसा झगड़ा कि उसकी बीवी हमेशा के लिए उसके मायके चली गई। 1 महीने बाद खबर आती है कि उसकी बीवी मायके से अचानक रातों रात गायब हो गई। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता किसी के साथ भाग गई होगी, तो कोई कहता बबलू ने ही मारा होगा इसे। एक दिन हमेशा की तरह शाम के 6 साढ़े 6 बजे वो 5 बच्चे फिर से बबलू के ठेले की तरफ चल पड़े, लेकिन उस रात वो घर पे वापस नहीं आए। दूसरे दिन सुबह जब गांव वाले जंगल में उन बच्चों को ढूंढने लगे, तो हर एक बच्चे की लाश जंगल में अलग अलग जगह पर अलग अलग पेड़ों के नीचे मिली। अब क्योंकि बच्चों के घर वालों को पता था कि वो हर शाम बबलू के ठेले पर जाया करते थे, तो शक की सुई जाहिर सी बात है बबलू की ओर मुड़ी। गांव वालों को यह बात सच लगी क्योंकि बबलू की बीवी पहले से ही गायब थी, और बबलू मुफ्त में बच्चों को वड़ा पाव दिया करता था। आखिर मुफ्त में हर दिन इतने सारे वड़ा पाव वो क्यों देगा किसी को? गुस्सैल गांव वालों ने उसकी एक ना सुनी, पहले लाठियों से मार मार कर अधमरा कर दिया, और फिर जितनी भी जान बची थी उसे पत्थर से कुचल कुचल कर मार डाला। गांव वालों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि जंगल में जिस जिस पेड़ के नीचे बच्चों की लाश मिली थी, वहां पर बबलू के शरीर के टुकड़े काट काट कर दफना दिए गए। तब से ऐसा कहा जाता है कि जंगल में कहीं भी अगर आपको एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो, तो समझ लीजिए आपके ठीक नीचे बबलू के शरीर का कोई हिस्सा गड़ा हुआ है। विनय और अक्षय दोनों चुपचाप। विजु कहता है, हमें निकलना होगा, आपकी टीम आपका इंतजार कर रही है। मैं आपको बुलाने के लिए आया था यहाँ पे। तीनों चलकर उनके कमरे के पास पहुंच जाते हैं, उस पथरीले रास्ते पर जहां उनकी बस खड़ी है। विजु कहता है, मैं आपकी बैग्स लेकर आता हूँ। अक्षय और विनय बिना कुछ बोले सिर्फ गर्दन हिलाते हैं। उन्हें इन 24 घंटों में जो हुआ उस पर अब तक यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बार बार यही सोच रहे थे कि अगर बबलू उन्हें मार देता तो, और अगर बबलू ने उस बच्चे को मारा हो तो उन दोनों की मदद क्यों कर रहा था। ये सोचते सोचते दोनों बस में आकर बैठ जाते हैं, जहां उनकी पूरी टीम पहले से मौजूद होती है। लोगों से सवाल पूछते हैं, अरे कहाँ गए थे, जंगल में जाना मना है, तुम्हारी वजह से निकलने के लिए लेट हुआ। देखो, दोनों बिना कुछ बोले अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ 2-3 मिनट बाद अक्षय विनय से कहता है, कल रात से अब तक यहाँ पर जो भी हुआ उसके बारे में वो कभी भी बात नहीं करेंगे, और ना ही कभी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा था। विनय ये बात मान लेता है कि तभी एक आदमी विनय और अक्षय की बैग लेकर बस में चढ़ता है और उनकी बैग्स उनके हाथ में दे देता है। अक्षय पूछता है, विजू विजू, वो लड़का हमारा केयरटेकर, कल से जो हमारे साथ था, बाय तो कहने दो उसको। विजू, क्या मजाक कर रहे हो साहब, कल से मैं ही तो आपके साथ हूँ। मैंने तो बोला था ना कि आपको जो चाहिए बता दो, मैं कर दूंगा आपके लिए। यह कहकर वो आदमी बस से नीचे उतरता है। बस मुंबई की तरफ अपना सफर शुरू करती है। अक्षय और विनय उस आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं, लेकिन उन्हें दिखता है सिर्फ घना जंगल। आज के एपिसोड के स्पॉन्सर है द बेस्ट यू नो डॉट कॉम, TheBestYouKnow.com। आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी, या आपको कुछ भी पूछना हो या बताना हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अन्य शेर शायरी और पॉडकास्ट के लिए और आर्टिकल्स के लिए जाइए चारवाक.com पर। शुक्रिया।